दिन भर 19 दिसंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। एलेप्पो से लोगों का सुरक्षित क्षेत्र में जाना जारी, लेकिन अब भी लोग चिकित्सकीय सहायता के मोहताज।
The main problem actually it is trauma injuries. More than 2 months under heavy bombardment.
जाने माने पर्यावरणविद और गांधीवादी अनुपम मिश्र का देहावसान।
पारंपरिक पर्यावरण की, पारंपरिक जीवन शैली की और पारंपरिक जल संचय पद्धतियों आदि की बात करने वाला कोई व्यक्ति हमारे बीच में था तो अनुपम मिश्र थे। बिल्कुल सादे चप्पल और कुर्ते पाजामे में रहते थे, मोबाइल भी उन्होंने कभी नहीं खरीदे।
करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ ठोका 13 शतक। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे हजारों लोगों को निकालने का काम जारी है, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अनाथ हो चुके हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि इनमें से कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें फौरन बेहतर इलाज की जरूरत है। समझा जाता है कि पूर्वी अलेप्पो से लगभग 30,000 लोगों को निकाला जा रहा है, जिनमें आम नागरिक और विद्रोही दोनों शामिल हैं। भारत में हैदराबाद की एक अदालत ने दिलसुख नगर धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के कथित सह संस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान और 3 अन्य को फांसी की सजा सुनाई है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में फरवरी 2013 में 2 धमाके हुए थे, जिनमें 18 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साल 2010 से 2015 के बीच पुलिस हिरासत में लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान हिरासत में कैदियों की मौत के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को दोषी करार नहीं दिया गया है। हिरासत में होने वाली मौत के मामलों में पुलिस अक्सर बीमारी, भागने की कोशिश, खुदकुशी या दुर्घटना को मौत की वजह बताती है, लेकिन मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि इनमें से ज्यादातर मौतें हिरासत में प्रताड़ना की वजह से होती हैं।
Deaths in custody here should not happen because the Indian government is actually
हिरासत में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, सब कुछ है और उम्मीद की जाती है कि हिरासत में किसी की मौत ना हो। ये थे ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में सरकारी उड़ान सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को उन तस्वीरों के सामने आने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दिखाया गया है कि हवाई पट्टी पर एक काले बकरे की कुर्बानी दी जा रही है। काले बकरे की ये कुर्बानी एक यात्री विमान के सामने दी गई है, जिसके पीछे मंशा ये बताई गई है कि इससे विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसमें 47 लोग मारे गए थे। चीन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ट्रंप ने चीन पर अमेरिका का ड्रोन चुराने का आरोप लगाया था। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुआनिंग ने कहा, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये चोरी शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये शब्द पूरी तरह से गलत है। बाकी तथ्य वही हैं जो चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है। चीन की नौसेना को ये ड्रोन नजर आया, उसने पड़ताल की और पाया कि ये पेशेवर ड्रोन है। आप कुछ भी कहें, मोटी बात यह है कि चीन की नौसेना जिम्मेदार और पेशेवर तरीके से काम करती है। ये थी चीन के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार में लोकप्रिय नेता आंग सान सूची ने देश के रखाइन इलाके में जारी संकट के समाधान के लिए समय की मांग की है। रखाइन इलाके में सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार करने के गंभीर आरोप हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान आंग सान सूची ने कहा कि रखाइन प्रांत में जरूरी मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि रखाइन प्रांत के कुछ हिस्सों में सैनिकों ने रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में तालिबान का कहना है कि उसने एक ऐसी महिला की हत्या कर दी है जिसने अपने पति को एक तरफा तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। इस महिला का नाम अजीजा बताया जाता है, जिसका पति ईरान में रहता है। खबरों के मुताबिक ईरान से लौटने पर इस व्यक्ति ने तालिबान की अदालत में अर्जी लगाई, जिसके बाद तालिबान ने इस महिला की हत्या कर दी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया के एलेपो में संघर्ष वाले इलाकों से निकाले जाने का काम दोबारा शुरू होने के बाद हजारों लोग विद्रोहियों के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या 30,000 तक है, जिनमें आम लोग और लड़ाके दोनों शामिल हैं। जो लोग एलेपो से बाहर निकल चुके हैं उनमें 7 साल की लड़की बाना अल आबिद भी शामिल है, जिसने अपने ट्विटर पोस्ट से एलेपो में फंसे लोगों की दुर्दशा से सारी दुनिया को वाकिफ कराया था। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप सोनी से।
सीरिया के एलेपो में विद्रोहियों और सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम दोबारा शुरू हो गया है। खबरें मिल रही हैं कि पूर्वी एलेपो में विद्रोहियों के इलाके से हजारों लोग शहर के बाहर उस ठिकाने पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें भोजन और दवाएं दी जा रही हैं। तुर्की सीरिया सीमा पर मौजूद इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साले सफा ने बीबीसी को बताया कि एलेपो के लोग ठीक ठाक चिकित्सा सुविधा के लिए भी तरस गए थे।
The situation in general is very bad. Every day there is a delay. Every day there is...
हालात आमतौर पर बहुत खराब हैं। हर दिन देरी होती है, हर दिन समस्या होती है। एलेपो में कोई डॉक्टर नहीं है। अभी कल ही एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कोई सर्जन नहीं था। हमारे पास मरीज को बेहोश करने की दवा तक नहीं थी।
साले सफा का यह भी कहना है कि एलेपो से निकल रहे कई लोगों पर युद्ध का असर नजर आ रहा है और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है।
The main problem actually it is trauma injuries.
असल समस्या दरअसल यह है कि लोगों को सदमा लगा है। यहाँ लोगों ने 2 महीने से अधिक समय तक भारी बमबारी देखी है। कई लोगों के सिर पर चोट लगी है। बहुत सारे लोगों को हड्डियों में तकलीफ हो गई है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वो कुपोषण की वजह से मौत की कगार पर पहुंच गए हैं।
पूर्वी एलेपो पर साल 2012 में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। सीरियाई सुरक्षा बलों ने लगातार हमले करके उन्हें कुछ एक हिस्सों तक सीमित कर दिया, लेकिन उन हिस्सों में आम लोग भी फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का काम पिछले हफ्ते शुरू किया गया था। एलेपो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग 23 लाख है। यह शहर सीरिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी रहा है। यही वजह है कि विद्रोही और सरकारी सुरक्षा बल दोनों ही इस पर अपना अपना नियंत्रण करना चाहते थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ साल 2011 में जब विद्रोह हुआ तब एलेपो में ज्यादा हलचल नहीं हुई, लेकिन अगले ही साल यानी साल 2012 में यह शहर अचानक से युद्ध का मैदान बन गया। तब विद्रोही लड़ाकों ने बशर अल असद की सरकार को हटाने के लिए हमला किया और उत्तरी सीरिया पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद एलेपो 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्से पर विद्रोहियों का जबकि दूसरे हिस्से पर सरकारी सुरक्षा बलों का नियंत्रण था। 4 साल की लड़ाई के बाद सुरक्षा बलों को सफलता इस महीने तब मिली जब उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस दौरान कई निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन सीरिया की सरकार और उसका सहयोगी रूस इससे इनकार करता रहा है।
एलेपो में बाहर निकलने का काम जारी। हैदराबाद कोर्ट ने दिलसुख नगर धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के कथित सह संस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जियाउर रहमान और 3 अन्य को फांसी की सजा सुनाई है। 21 फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 धमाके किए गए थे जिनमें 18 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये दोनों धमाके आईडी के जरिए किए गए थे। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
यासिन भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा और उनके 4 साथियों को सजाए मौत मिलने की आशंका तो थी ही, क्योंकि जिस तरह एनआईए ने इस मुकदमे की तैयारी की उससे कुछ तो इशारे मिले ही थे। एनआईए ने करीब 450 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया था और करीब 250 दस्तावेज भी पेश किए गए। एनआईए के वकील सुरेंद्र ने कहा, कोर्ट ने फांसी की सजा इसलिए दी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ये मुकदमा नायाब है। ये थे एनआईए के वकील सुरेंद्र के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि बम विस्फोट के बाद बहुत दिनों तक पुलिस को कोई अनभिज्ञा नहीं मिला था, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे से पहला संकेत मिला और फिर जब यासीन की गिरफ्तारी नेपाल के बॉर्डर पर हुई तो तब उन्होंने पुलिस को बताया कि वही इस बम विस्फोट के जिम्मेदार थे। कर्नाटक के पूर्व आईजीपी इंटेलिजेंस गोपाल हसूर ने कहा,
आई थिंक द एनआईए कोर्ट वर्डिक्ट टुडे इज ए स्ट्रांग मैसेज अगेंस्ट टेररिज्म।
कोर्ट का निर्णय एक